प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल का गहराई से अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में कई गूढ़ बातों को जान सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाइबल का विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हमारे वक्ता आज के प्रवचन को आरम्भ करें, सुनते हैं ये मधुर गीत।
मैं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ मेरे खुदा, मेरे खुदा, मांगू दुआ, मांगू दुआ। मैं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ तेरी हमद गाऊं। सबसे आला वो ही है सबसे बाला, नाम यीशु सबसे आला वो ही है सबसे बाला,
सबसे वो आला सबसे बाला, सबसे वो आला सबसे बाला,
नाम यीशु सबसे आला वो ही है सबसे बाला, नाम सदा रहने वाला, सत्य में झुक जाऊं तेरी हमद गाऊं, चौपान है तू मेरी चट्टान है, तू मेरा चौपान है तू मेरी चट्टान है,
मेरा चौपान और तू मेरी चट्टान, मेरा चौपान और तू मेरी चट्टान,
तू मेरा चौपान है तू मेरी चट्टान है, तू मेरा निशान है, तुझ पे कुर्बान जाऊं तेरी हमदगान।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप प्रभु की कृपा से कुशल मंगल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से यूहन्ना की प्रथम पत्री का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम पत्री का मुख्य विषय है गूढ़ ज्ञानवाद के विरुद्ध उत्तर। यूहन्ना इस पत्री में गूढ़ ज्ञानवादी शिक्षा के विरुद्ध उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि गूढ़ ज्ञानवादी प्रभु यीशु मसीह को केवल एक साधारण मनुष्य मात्र ही मानते थे और उनकी यही शिक्षा थी। इसी के आधार पर हमने पिछले बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में देखा कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को तीन रूप में रखा। उसने परमेश्वर की तीन परिभाषाएं दी। पहली परिभाषा है कि परमेश्वर ज्योति है, दूसरी परिभाषा दी कि परमेश्वर प्रेम है, और तीसरी परिभाषा है परमेश्वर जीवन है। हम तीसरी परिभाषा के विषय में पढ़ रहे हैं। पिछले बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमने 1 से 6 पदों का अध्ययन किया। 5वें अध्याय के 1 से 6 पदों को हमने देखा। 6वें पद में प्रेरित यूहन्ना ने बताया कि ये वही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो जल और लहू के द्वारा आया। अर्थात यीशु मसीह केवल जल द्वारा ही नहीं आया, वरन जल और लहू द्वारा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु मसीह जल और लहू द्वारा आया, ये किस प्रकार से प्रमाणित होता है? 5वें पद में प्रेरित बताते हैं कि वो कौन है जो संसार पर विजयी होता है, सिवाय उसके जो ये विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और ये वही है जो जल और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह। यूहन्ना यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि संसार पर विजयी कौन हो सकता है, तो उसका उत्तर देते हैं, वो जो जल और लहू से उत्पन्न हुआ है। यूहन्ना जल का अर्थ बताते हैं, और पवित्र बाइबल भी हमको जल का अर्थ बताते हुए ये बताती है कि जल परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदीमस से कहा, निकोदीमस धर्म का गुरु था, ज्ञानी व्यक्ति था, और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर स्वर्ग के राज के विषय में चर्चा करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमने सीखा कि जल परमेश्वर का जीवित वचन है जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रयोग किया जाता है। लहू प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की ओर संकेत करता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न केवल जल द्वारा आया, वरन जल और लहू द्वारा आया। हम इस पत्री के प्रारंभ ही से देखते आए हैं कि यूहन्ना ने ये पत्री अपने समय के गूढ़ ज्ञानवादियों की शिक्षा के विरुद्ध उत्तर के रूप में लिखी है। उनका कहना था कि यीशु एक साधारण मनुष्य के समान जन्मा, और जब तक उसका बपतिस्मा नहीं हुआ वह वैसा ही था, अर्थात एक साधारण मनुष्य मात्र था। उस समय अर्थात बपतिस्मे के समय मसीह मानव यीशु के ऊपर उतरा, किंतु उसकी मृत्यु के समय मसीह उसे छोड़ गया और यीशु एक साधारण व्यक्ति के रूप में क्रूस पर मरा। ये थी गूढ़ ज्ञानवादियों की शिक्षा। आज भी अनेक लोग ऐसा ही विश्वास करते हैं, इसी शिक्षा पर चलते हैं। यूहन्ना अपनी पत्री में यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मानव दोनों हैं। मित्रवर, प्रभु यीशु मसीह की सेवा उनके बपतिस्मे के समय से आरंभ हुई। जिस समय उनका बपतिस्मा हो रहा था, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और स्वर्ग से ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह की सेवा प्रारंभ होती है, और मृत्यु के साथ उनकी पार्थिव सेवा उस समय समाप्त हुई जब उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दिया और घोषणा की कि सब कुछ पूर्ण हुआ। प्रेरित यूहन्ना इस बात पर बल देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न केवल जल संस्कार के समय परमेश्वर के पुत्र थे, वरन वह क्रूस पर प्राण देते समय भी परमेश्वर के पुत्र थे। इसलिए वो कहते हैं, ये वही है जो जल और लहू द्वारा आया। और इसकी साक्षी देने वाला है पवित्र आत्मा, और वो दो ढंग से इस बात की साक्षी देता है। पहला ढंग है पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जल संस्कार अर्थात बपतिस्मे के समय उन पर उतरा। इसे आप हमारे साथ देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 32 से 34 पद। इन पदों में इस प्रकार से बताया गया है, और यूहन्ना ने ये कहते हुए साक्षी दी, मैंने आकाश से आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा है और वह उस पर ठहरा, और मैं तो उसको नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला यही है, और मैंने देखा और साक्षी दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। सो पहली बात तो यह है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जल संस्कार के समय अभिषिक्त करता है, उन पर उतरता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा निरंतर विश्वासियों के हृदय में प्रेरितों की साक्षी को प्रमाणित कर रहा है कि यीशु का बपतिस्मा तथा मृत्यु ये प्रमाणित करते हैं कि यीशु ही मसीह है जो परमेश्वर का पुत्र है। इसके लिए हम पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के 27वें पद को तथा पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के 3रे पद को देखेंगे। पर जहां तक तुम्हारा संबंध है, वह अभिषेक जो तुमने उससे प्राप्त किया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इस बात की आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जिस प्रकार उसका वह अभिषेक तुम्हें सब बातों के विषय में सिखाता है और सत्य है और झूठ नहीं, और जैसा कि उसने तुम्हें सिखाया है तुम उसमें बने रहो। और पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के 3रे पद में भी हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कहता कि यीशु शापित है, और न पवित्र आत्मा के बिना कोई ये कह सकता है कि यीशु प्रभु है। सो यहाँ पर दो बातें पवित्र आत्मा करता है, कि पवित्र आत्मा निरंतर विश्वासियों के हृदय में प्रेरितों की साक्षी को प्रमाणित कर रहा है, और इस प्रकार प्रेरित यूहन्ना अपनी पत्री में ये स्पष्ट करते हैं कि मसीह यीशु के जल संस्कार से लेकर उनकी मृत्यु व पुनरुत्थान के कार्यक्रम को हमारे लिए वास्तविक बनाने की सेवा पवित्र आत्मा करता है। यूहन्ना कहते हैं कि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। तब 7वें पद में हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 7वां पद, और पवित्र आत्मा ही है जो साक्षी देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य है। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरी मृत्यु व पुनरुत्थान तथा पिंतेकुस्त के दिन के बीच के समय में तुम कुछ ना करना और यरूशलेम ही में ठहरे रहना। उन्हें उस समय मसीह की साक्षी नहीं देनी थी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना वह शक्तिशाली प्रभावशाली साक्षी नहीं दे सकते थे, और इसलिए ये अनिवार्य है कि यदि कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तो केवल इस कारण से नहीं कि आज से 2000 वर्ष पूर्व मसीह यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, वरन इसलिए कि पवित्र आत्मा मनुष्य के हृदय तथा जीवन में कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रेरितों से कहा कि तुम यरूशलेम ही में ठहरे रहना जब तक समय ना हो, जब तक पिंतेकुस्त का समय ना आए तुम मेरी साक्षी ना देना। प्रिय मित्र, पवित्र आत्मा द्वारा मनुष्य सच्चा पश्चाताप करता है। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा मनुष्य को विश्वास लाने में, पश्चाताप करने में, अपने पापों को मानने में सहायता करता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य ही है जो व्यक्ति में हृदय परिवर्तन लाता है। पवित्र आत्मा की सहायता से मनुष्य पश्चाताप करता है, अपने पापों को मान लेता है। पवित्र आत्मा द्वारा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मोक्षदाता ग्रहण करता है। अनेक लोग हैं जो एक बात को पूर्ण करने के द्वारा कलीसिया के सदस्य बन गए हैं, और इसलिए उन्हें देखकर हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि वह वास्तव में परमेश्वर की संतान है या नहीं। मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान को हमारे लिए वास्तविक बनाने वाला पवित्र आत्मा ही है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए इंसान को अपने पापों से पश्चाताप करना अत्यंत आवश्यक है, और इस कार्य में हमारी सहायता करने वाला पवित्र आत्मा है। अब इसकी सहायता बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि पवित्र आत्मा हमारी सहायता ना करे तो कुछ भी कार्य संभव नहीं। प्रेरित यूहन्ना बताते हैं कि तीन साक्षी हैं और तीनों इस बात से सहमत हैं। पवित्र आत्मा, वचन और लहू, ये तीन साक्षी हैं और ये तीनों इस बात से सहमत हैं। देखिए यहाँ बताया गया है साक्षी देने वाले तीन हैं। आठवां पद देखिए, साक्षी देने वाले तीन हैं, आत्मा, जल और लहू, और इन तीनों में सहमति है। अब इन तीनों साक्षियों की आपस में क्या सहमति है? वो एक ही उद्देश्य पर सहमत हैं। और वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह को संसार के मोक्षदाता के रूप में प्रस्तुत किया जाना, जिसने कैलवरी के क्रूस पर अपना बहुमूल्य रक्त बलिदान किया और हमारे पापों के छुटकारे के मूल्य को चुकाया। ये तीनों साक्षी इस समय हमारे मध्य उपस्थित हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को लेकर आपके हृदय में प्रयोग करता है, परमेश्वर द्वारा किए गए उद्धार के कार्य को वास्तविक बनाता है। आपको परमेश्वर के उद्धार के कार्य का ज्ञान किस प्रकार होता है? पवित्र बाइबल के अध्ययन के द्वारा। आप परमेश्वर के उद्धार के कार्य को कैसे पहचानते हैं? इसका ज्ञान आपको कैसे होता है? ये ज्ञान आपको पवित्र बाइबल के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है। पवित्र बाइबल ही आपको बताती है कि मसीह यीशु ने क्रूस पर आपके पापों के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपकी क्षमा के लिए, आपके पूर्ण छुटकारे के लिए अपना बलिदान दिया है। पवित्र आत्मा ही आपको बताता है, पवित्र बाइबल ही आपको बताती है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके छुटकारे के मूल्य को चुकाया है। यदि आप इस बात पर विश्वास लाते हैं तो आप परमेश्वर की ओर से उद्धार का अनुभव प्राप्त करते हैं। तब नवे पद से आगे हम देखते हैं जहां लिखा है, यदि हम मनुष्यों की साक्षी मान लेते हैं तो परमेश्वर की साक्षी कहीं बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर की साक्षी ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में साक्षी दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह स्वयं में साक्षी रखता है। वो जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे झूठा ठहराता है, क्योंकि उसने उस साक्षी पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। अब प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में क्या साक्षी दी है? तब आगे यूहन्ना बताते हैं, वो साक्षी ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास वह जीवन भी नहीं। यूहन्ना इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जीवन अर्थात अनंत जीवन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है अर्थात प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसके पास वो जीवन भी नहीं है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तब 13वें पद में प्रेरित बताते हैं कि मैंने तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो ये बातें इसलिए लिखी हैं कि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रेरित यूहन्ना इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जब तुमने परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो इस बात को निश्चय जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड किया गया नहीं, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। और यूहन्ना भी इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। 14वें पद में वो कहते हैं, और जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। यदि हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो हमें प्राप्त हो चुका है। योहन्ना इस बात को सिखाते हैं कि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो इस बात पर हम पूर्ण विश्वास करें और हमें ये पूर्ण निश्चय हो कि जो हमने मांगा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा है, और इसलिए जब हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा है तो वो हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा, वरन प्राप्त हो चुका है। सो इसलिए जब हम ये विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है और हमने उसका उत्तर प्राप्त कर लिया है, तो फिर धन्यवाद ही शेष रह जाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करो और सदा धन्यवाद देते रहो। तब 16वें पद को देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका परिणाम मृत्यु ना हो, तो वह प्रार्थना करे और परमेश्वर उसके कारण उसे उन्हें जिन्होंने ऐसा पाप किया हो जिसका परिणाम मृत्यु नहीं है जीवन देगा। ऐसा पाप तो है जिसका परिणाम मृत्यु है, मैं ये नहीं कहता कि वह इस बात के लिए निवेदन करे। अब इस पद को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यहां मृत्यु को शारीरिक मृत्यु के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। ये आत्मिक मृत्यु के संदर्भ में कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर की संतान के पास अनंत जीवन है। किंतु प्रेरित यूहन्ना यहां इस बात को बता रहे हैं कि यदि विश्वासी जन अर्थात परमेश्वर की संतान पाप करेगी तो स्वर्गीय पिता उसे अपने पास अनंत निवास में वापस बुला लेंगे। वह उसे शारीरिक रूप से इस पृथ्वी पर से हटा लेंगे, संभवतः इसलिए कि वह अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम का निरादर कर रहा है, परमेश्वर के नाम को कलंकित कर रहा है, परमेश्वर के नाम को उचित महिमा नहीं दे रहा है। आइए हम उन लोगों पर दृष्टि डालें जिन्होंने ऐसा पाप किया जिसका परिणाम मृत्यु है। सर्वप्रथम हम प्रभु के सेवक मूसा और हारून के जीवनों को लेते हैं। इन दोनों ने परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा पाप किया जिसका परिणाम मृत्यु हुआ। यहां मृत्यु से हमारा तात्पर्य है शारीरिक मृत्यु। आपको स्मरण होगा कि जब निर्जन प्रदेश में इसराइल प्रजा प्यास के कारण व्याकुल हो उठी और उन्होंने प्रभु के सेवक मूसा को इतना उत्तेजित कर दिया कि उसने उस चट्टान में दो बार अपनी लाठी से प्रहार कर दिया, जबकि परमेश्वर पिता की आज्ञा अनुसार उसे उस चट्टान का स्पर्श भी नहीं करना था, उसे मात्र जल देने के लिए कहना था। प्रभु के दास मूसा को ये कहना था कि जल दो। श्रोता, वह चट्टान मसीह का प्रतीक थी, एक उदाहरण थी। पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय के 4वें पद में प्रेरित पौलुस ने बताया है कि सब ने अर्थात समस्त इसराइल प्रजा ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। श्रोता, मसीह केवल एक बार क्रूस पर बलिदान हुए हैं। जी हां, प्रभु यीशु मसीह बार बार क्रूस पर बलिदान ना तो हुए और ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह केवल एक बार ही क्रूस पर बलिदान हुए, किंतु मूसा ने इस प्रतीक को नष्ट किया, उनका निरादर किया, क्योंकि उन्होंने उस चट्टान पर जो मसीह का प्रतीक थी दो बार प्रहार किया। और गिनती की पुस्तक के 20वें अध्याय के 7-12 पदों में इस विषय में हमें इस प्रकार से बताया गया है, यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून के साथ मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते चट्टान से बातें कर। ध्यान दीजिए, उनके देखते चट्टान से बातें कर कि वह अपना पानी दे, और इस प्रकार तू चट्टान में से जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पीने दे। यहोवा के आज्ञानुसार मूसा ने लाठी उठा ली। तब मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने खड़ा करके लोगों से कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हम इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और चट्टान पर दो बार लाठी से मारा और उसमें से पानी फूट निकला, तब लोगों और उनके पशुओं ने पिया। परंतु यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस प्रजा को उस देश में ना पहुंचा पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। मित्रवर, परमेश्वर पिता ने प्रजा को जल तो दिया, किंतु उसने मूसा और हारून को आगे न जाने दिया। जो भी हो, प्रभु के दास मूसा ने प्रभु से इस कृत्य के लिए क्षमा याचना की कि परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा के देश में जाने की अनुमति प्रदान करें, किंतु उसकी विनती के उत्तर में परमेश्वर ने कहा, तुम इस प्रजा को उस देश में ना पहुंचा सकोगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के तीसरे अध्याय के 24 से 27 पदों में आप इस विवरण को पढ़ सकते हैं। मित्रवर, परमेश्वर पिता ने मूसा की विनती के उत्तर में कहा, बस कर, इस विषय पर मुझसे फिर कुछ न कहना। सो हमने देखा कि प्रभु के दास मूसा और हारून दोनों ने ऐसा पाप किया जिसका परिणाम मृत्यु अर्थात शारीरिक मृत्यु था। नए नियम में भी हमारे पास अन्य उदाहरण है, किंतु समय अभाव के कारण आज हम यहीं पर ठहर जाते हैं। अगले कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम को सुनने और हमें पत्र लिखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप में से कई श्रोताओं ने बाइबल पत्राचार अध्ययन करने की इच्छा जाहिर की है। जो श्रोता इस अध्ययन को करना चाहते हैं, वे कृपया हमें पत्र लिखें। याद रहे, अपना नाम और पता साफ साफ लिखें। पत्राचार अध्ययन के लिए जल्द से जल्द अपना नामांकन करवाएं। बाइबल पत्राचार अध्ययन के लिए हमारा पता है BCC पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको आशीष मिली होगी। यदि आप आज के बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम सत्य वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम सत्य वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।